ओम शांति ओम शांति। आज प्यारे प्यारे बाबा ने हम बच्चों को पुरुषार्थ और बाप से क्या प्राप्ति होती है और किन किन बातों का ध्यान रखना है। बाबा ने कहा बच्चे जब यहाँ आते हैं यहाँ हंसों की कंपनी में संग में रहते हैं, घर जाते हैं तो फिर बगले मिलते हैं। कई बच्चे बाबा को लिखते बाबा क्या करें कि मैं एक अकेला हंस हूँ, बाकी तो सब बगले हैं। तो बाबा क्या कहते हैं कि बगलों को भी हंस बनाना है, लेकिन कई बच्चे ऐसे हैं चलते चलते उनके संग में आकर के बगुला बन जाते हैं। फिर आश्चर्यवत सुनंती कथंती जिसको बाबा कहते हैं ओहो माया, ये भागंती हो जाते हैं। तो बाबा ने कहा कि जो थोड़ा बहुत ज्ञान भी सुना है लेकिन सतयुग में आकर के कुछ न कुछ पद पा लेते हैं। और दूसरी बात बाबा ने कहानी सुनाई है, कौन सी कहानी, अमीर और फकीर की। जैसे सतयुग में तुम हो तो अमीर हो और कलयुग में आते हो फकीर बन जाते हो, और बाबा आकर के फकीर से अमीर बनाते हैं। फिर बाबा ने कहा देखो कौन सी ऐसी चीज है जो अंदर की हड्डियों को नरम करती है, सॉफ्ट करती है, वो है ज्ञान। ज्ञान से आत्मा की जो आत्मा की हड्डी तो नहीं कहें, शरीर की हड्डी भी नहीं कहेंगे, बुद्धि की कॉन्शियस को बाबा ने कहा कि हड्डियां नरम होती हैं, भक्ति में भी नरम होती हैं। लेकिन बाबा ने कहा देखो पहले जो भक्ति थी वो कैसी थी, बहुत अच्छी, बाद में भक्ति भी तमो प्रधान होती है तो भक्ति में भी कई ठगी कर लेते हैं, भक्ति भी नरम करती है लेकिन ठगी से वो नरम नहीं हो पाते हैं। फिर बाबा ने खास संग पर भी ध्यान दिया है, ध्यान खिंचवाया है। अभी हम सुनते हैं प्यारे बाबा के महावाक्य। आज की तारीख है 24 अप्रैल 2024, मुरली का मुख्य हेडिंग, मीठे बच्चे तुम सवेरे अमीर बनते हो, शाम को फकीर बनते हो, फकीर से अमीर, पतित से पावन बनने के लिए दो शब्द याद रखो, वो कौन से हैं, मन मना भाव मध्या जीव भाव। मीठे बच्चे तुम सवेरे अमीर बनते हो, शाम को फकीर बनते हो, फकीर से अमीर, पतित से पावन बनने के लिए दो शब्द याद रखो, मन मना भाव मध्या जीव भाव। आज का प्रश्न है कर्म बंधन से मुक्त होने की युक्ति क्या है। बहुत कर्म बंधन है ना, तो बाबा कहते हैं पहला है याद की यात्रा तथा ज्ञान का सिमरन। कर्म बंधन से मुक्त होने की युक्ति याद की यात्रा और ज्ञान का सिमरन। दूसरा एक के साथ सर्व संबंध रहे, अन्य कोई में बुद्धि ना जाए। एक के साथ सर्व संबंध रहे, अन्य कोई में भी बुद्धि ना जाए। तीसरा जो सर्वशक्तिवान बैटरी है उस बैटरी से योग लगा हुआ हो। चौथी बात अपने ऊपर पूरा अटेंशन हो। पांचवा दैवी गुणों के पंख लगे हुए हो तो कर्म बंधन से मुक्त होते जाएंगे। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, बाप ने बैठ समझाया है, ये है भारत के लिए कहानी। जैसे भारत के उत्थान और पतन की कहानी आज बाबा बता रहे हैं, ये भारत के लिए कहानी। क्या कहानी है, कौन सी कहानी है, सुबह को अमीर और शाम को फकीर। एक कहानी सुनाते ना, जैसे बच्चों को सुनाते, एक राजा था, दिन में क्या बन जाता था, एक व्यक्ति था, दिन में क्या बन जाता था, रात को क्या बन जाता था। तो बाबा कहते सुबह को अमीर हैं, शाम को फकीर हैं। इस पर एक कहानी है, सुबह को अमीर था और शाम को फकीर बन जाता था। ये बातें तुम अभी जानते हो, अब जब अमीर बनते हो तब तुम नहीं सुनते हो। जब सच्चू में अमीर है तब ये ज्ञान की बातें तो नहीं सुनते है ना। फकीर और अमीर की बातें तुम बच्चे संगम युग पर ही सुनते हो। ये दिल में धारणा करनी है, बरोबर भक्ति फकीर बनाती है, ज्ञान अमीर बनाता है, क्योंकि भक्ति करते करते नीचे आ गए ना, ज्ञान अमीर बनाता है। दिन और रात बेहद का है, फकीर और अमीर भी बेहद की बात है। बाबा कहते फकीर बनना अमीर बनना ये भी बेहद की बात है, और बनाने वाला भी बेहद का बाप है। अमीर कौन बनाता है? बेहद का बाप। सभी पतित आत्माओं के लिए एक ही बैटरी है पावन बनाने की। ऐसे ऐसे टोटके याद करो, टोटके में स्लोगन, जैसे स्लोगन होते ना, पति से पावन बनाने वाला कौन है? एक बाप है। और तो ऐसे बाबा कहते याद रखो, तो बाबा कहते ऐसे ऐसे टोटके याद रखो तो खुशी में रहेंगे। बाप कहते हैं बच्चे तुम सवेरे अमीर बन जाते हो, फिर शाम को फकीर बन जाते हो, कैसे बनते हो ये भी बाप समझाते हैं। फिर पति से पावन फकीर से अमीर बनने की युक्ति भी बाप ही बताते हैं। मनमना भाव, मध्याची भाव, यही दो युक्तियां हैं, ये भी बच्चे जानते हैं। अमीर बनने की युक्ति क्या है? मनमना भाव, मध्याची भाव। तो बाबा कहते हैं ये दो युक्तियां हैं, ये भी बच्चे जानते हैं कि ये पुरुषोत्तम संगम युग है। तुम जो भी यहाँ बैठे हो गारंटी है, कौन सी गारंटी है? कि तुम स्वर्ग में अमीर जरूर बनेंगे, ये गारंटी है। जो भी यहाँ बैठे हैं गारंटी है तुम स्वर्ग में अमीर जरूर बनेंगे। नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार, स्कूल में भी तो ऐसे होता है ना, स्कूल में पढ़ाई करते सब पढ़ रहे हैं, लेकिन जैसी पढ़ाई करते हैं वैसा उनको मार्क्स मिलता है। तो बाबा कहते स्कूल में भी ऐसे बैठते हैं ना, नंबर वार क्लास ट्रांसफर होता है, इम्तिहान पूरा होता है तो फिर नंबर वार जाकर बैठते एग्जाम देंगे। कोई एकदम हाईएस्ट क्लास में आ जाते हैं, फर्स्ट डिवीजन में, कोई सेकंड में, कोई थर्ड में, कोई केवल पास हो जाते हैं, फिर नंबर वहां जाकर बैठते हैं। वह है हज की बात और ये है बेहज की बात। नंबर वार रुद्र माला में पिरोए जाते, जितना पढ़ाई माला में भी वैसे आते हैं, रुद्र माला में पिरोए जाते। आत्मा माला अर्थात झाड़, बाबा कहते जो माला बनती है वो झाड़ है, उसी से ही तो आत्मा ही सारी झाड़ मीन्स जैसे कि सारा ग्रुप इकट्ठा होता है। माला अर्थात झाड़, बीज तो झाड़ का ही है, परमात्मा फिर मनुष्य सृष्टि का बीज है। ये बच्चे जानते हैं कि झाड़ वृद्धि को कैसे पाता है और पुराना कैसे होता है। आगे ये तुम नहीं जानते थे कि ये झाड़ है कैसे बढ़ता है, कैसे वृद्धि को पाता है, कैसे पुराना होता है। बाबा कहते ऐसे तुम पहले नहीं जानते थे, आगे तुम ये नहीं जानते थे, बाप ने आकर समझाया है। अभी ये है पुरुषोत्तम संगम युग, अभी तुम बच्चों को क्या करना है? पुरुषार्थ करना, पुरुषोत्तम संगम युग पर बच्चों को पुरुषार्थ करना है। और क्या करना है? और क्या करना है कौन बताएगा? दैवी गुण भी क्या करना है कौन बताएगा? तो आज बाबा ने कहा दैवी गुण के पंख लगाने, दैवी, कभी बाबा कहते धारण करना है, तो आज बाबा ने कहा कि दैवी गुण के पंख भी धारण करने हैं, अपने ऊपर पूरा ध्यान देना। तीन बातें, एक पुरुषार्थ करना है, दूसरा दैवी गुणों के पंख धारण करना है, तीसरा अपने ऊपर पूरा ध्यान देना है, चौथा याद की यात्रा से ही तुम पावन बनेंगे, और कोई उपाय ही नहीं है, कुछ भी कर लो, बाबा की याद के बिना उपाय पावन बन ही नहीं सकते, और कोई उपाय नहीं है। बाप जो सर्वशक्तिवान बैठी हैं, उनसे पूरा योग लगाना है, उनकी बैठी कभी ढीली होती ही नहीं, वह सतु रजो तमो में आते नहीं। बाबा की बैठी जो है वो सदा फुल है, कभी कम होती नहीं, क्यों? क्योंकि वो सतो रजो तमो में नहीं आते, वह सतो रजो तमो में नहीं आते, क्योंकि उनकी सदा कर्मातीत अवस्था है। तुम बच्चे कर्म बंधन में आते हो, कितने कड़े बंधन है ना, आएंगे माताएं आएंगी, ये बंधन है, बच्चों का बंधन है, घर का बंधन है, पति का बंधन है, भाई कहेंगे नौकरी का बंधन है, कई प्रकार के बंधन है। बाबा कहते कितने कड़े बंधन है, कितने कड़े बंधन है, कितने कड़े बंधन है। इन कर्म बंधनों से मुक्त होने का एक ही उपाय है, याद की यात्रा, सिवाय इसके और कोई उपाय नहीं। जैसे ही ज्ञान है, ये भी हड्डियां नरम करता, ज्ञान मिला तुम्हारी कॉन्शियस चेंज हो जाती, नहीं तो कई बार ऐसा होता है सुनते ही नहीं थे, समझते ही नहीं थे, अब जब ज्ञान सत्य समझ आता है तो बुद्धि एकदम बिल्कुल समझने लगती है। यूं तो भक्ति भी नरम बनाती है, कहेंगे बेचारा ये भक्त आदमी है, इसमें ठगी आदि कुछ भी नहीं। पहले जमाने में कुछ समय पहले जो भक्ति करते थे वो बहुत ही ऐसे होते थे, कभी ठगी चोरी झूठ नहीं बोलते थे, कहते इसमें कोई ठगी आदि कुछ भी नहीं। परंतु आजकल तो भक्तों में भी ठगी होती, आजकल के पता क्या चलता है, भगत बन के आते हैं और कई बार ऐसे ऐसे आ जाते हैं और पता भी नहीं बढ़ता है, भगत की बातों में आकर के उनको ऐसा उलझा देते, उनका सब कुछ लूट के ले जाते, क्या क्या नहीं चलता रहता है। तो बाबा कहते हैं परंतु भक्तों में भी ठगी होती है, बाबा तो अनुभवी है, ब्रह्मा बाबा तो अनुभवी है ना, आत्मा शरीर द्वारा धंधा धोरी करती है, तो इस जन्म का भी सब कुछ स्मृति में आता है। चार पांच वर्ष की आयु से अपनी जीवन कहानी याद रहती, कई ऐसे होते ना चार पांच वर्ष छोटेपन से भी याद रहता है, जब मैं चार साल का था अब स्कूल में नहीं गया था, मैंने ये किया वो किया, और पांच साल के होते तब स्कूल में भेजते हैं, तो जिनको चार साल से अपनी जन्म कहानी याद है, बाबा कहते बहुत उनको याद रहती, जिनको याद रहती हाथ खड़ा करो, चार साल से। फिर बाबा ने कहा कई तो पांच दस दस बीस वर्ष की भी जन्म कहानी याद नहीं रखते, तो बाबा ने कहा चार पांच वर्ष की आयु से अपनी जीवन कहानी याद वैसे तो रहनी चाहिए, कईयों को नहीं रहती है, कोई तो दस वर्ष या बीस वर्ष की बात को भी भूल जाते हैं। जन्म जन्मांतर का नाम रूप तो याद नहीं रह सकता, बाबा हमेशा कहते थे जब बच्चे आते थे नए नए, बाबा कहते थे अपनी जीवन कहानी लिख लो, चार पांच वर्ष से जो भी कुछ किया है उस समय क्या करेंगे बच्चे, इधर की चीज उठाई याद रख दी, इधर का चीज उठाई खा ली, और कोई याद थोड़ी कुछ करते हैं, फिर भी याद रहता है ना, बच्चे शरारती होते हैं उनको याद रहता हमने ये किया, पर जन्म जन्मांतर का नाम रूप तो याद नहीं रहता। एक जन्म को तो कुछ बता सकते हो ना बाबा, फिर देखो कैसे बता रहे, सारा याद नहीं है तो कम से कम एक जन्म का सारा नहीं बता सकते, कुछ तो बता सकते हो ना, फोटो आदि रखते हैं, दूसरे जन्म का तो पता नहीं रहता, पूर्व जन्म में क्या था, संस्कार भल मोह है लेकिन हम क्या थे वो तो नहीं जानते ना, इस जन्म का तो फोटो आदि सब कुछ पता रहता है, दूसरे जन्म का तो पता रह नहीं सकता। हर एक आत्मा भिन्न नाम रूप देश काल में पार्ट बजाती है, नाम रूप सब बदलता रहता है, जैसे दूसरा पार्ट हुआ नाम रूप कर्म, नाम रूप कर्म सब बदल जाता है, नाम रूप सब बदलता रहता है। ये तो बुद्धि में है, कैसे एक आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, जो 84 जन्म 84 नाम 84 बाप बने होंगे, अंत में तमो प्रधान संबंध हो जाता है। इस समय जितने संबंध हैं उतने कोई इतने होते रहे, आज जो संबंध है इतने संबंध है, चाचा मामा काका पता नहीं क्या क्या संबंध है, उतने संबंध सतयुग में तो होते नहीं। बाबा कहते इस समय जितने संबंध होते हैं उतने कभी होते नहीं, कलयुगी संबंधों को बंधन ही समझना चाहिए। अब कलयुगी समझो या ना समझो वैसे ही वो पूरे बंधन है, तो बाबा कहते कलयुगी संबंधों को बंधन समझना चाहिए। कितने बच्चे होते हैं, फिर शादी करते हैं, फिर बच्चे पैदा करते हैं, इस समय सबसे जास्ती बंधन है किसका, चाचे मामे काके का, बच्चे ढेर उसके आगे रिलेशन, उसके आगे बच्चे, चाचा मामा काका कितने रिलेशन्स हैं, इस समय सबसे जास्ती बंधन है चाचे मामे काके का। जिसने जास्ती संबंध उतने जास्ती बंधन। अखबार में पढ़ा था 5 बच्चे इकट्ठे हुए, 5ों ही तंदुरुस्त है। उस समय हुआ होगा, अभी भी कभी कभी होता रहता, कहीं कहीं कहाँ पर 2 बच्चे कहाँ पर 3 बच्चे इकट्ठे, तो उस समय लोगों के लिए तो नई बात थी, तो बोला 5 बच्चे पैदा हुए 5ों ही तंदुरुस्त है। तो बाबा बता रहे हैं क्योंकि बाबा ने अखबार की हेडलाइन पढ़ते थे और बाबा को बता, बाबा कहते कि दुनिया कैसी तमो प्रधान होती जा रही है, तो बाबा पूरा नहीं पढ़ते, अखबार आती थी हेडलाइन पढ़ा तो बाबा हेडलाइन से समझ जाते थे क्या है, तो इसलिए बाबा ने पढ़ा। तो फिर बाबा बता रहे हैं अखबार में पढ़ा 5 बच्चे इकट्ठे पैदा हुए, 5ों ही तंदुरुस्त है, हिसाब करो कितने ढेर संबंध बन जाते, 5 बच्चे उनके आगे के बच्चे उनके आगे रिलेशन्स होंगे तो कितने संबंध बन जाएंगे। इस समय तुम्हारा संबंध सबसे छोटा है, सिर्फ एक बाप से ही सर्व संबंध है, दूसरा कोई से भी तुम्हारा बुद्धि योग नहीं है सिवाय एक बाप के, सत्यु में फिर इनसे जास्ती है। अब बताओ सत्यु में कितना संबंध है, बाबा कहते संगम युग पर केवल एक बाप से संबंध है, सत्यु में से जास्ती मीन्स माँ बाप है भाई बहन है तो वो तो संबंध रहेगा ना, तो बाबा कहते सत्यु में फिर इनसे जास्ती है। हीरे जैसा जन्म अभी तुम्हारा है, हाईएस्ट बाप बच्चों को एडॉप्ट करते हैं, जीते जी गोद में जाना माना वर्षा पाने के लिए सो अभी ही होता है, तुम ऐसे बाप की गोद में आए हो। नशा किसकी गोद में आए हैं, हम सब शिव बाबा की गोद में आए जिससे वर्षा मिलता है, तुम ऐसे बाप की गोद में आए हो जिससे तुमको वर्षा मिलता है, तुम ब्राह्मणों से ऊंच कोई है नहीं। उस दिन भी बाबा बता रहे थे ना तुम्हारा ये ईश्वरीय परिवार ईश्वरीय कुल है, तो बाबा कहते तुम ब्राह्मणों से और कोई भी ऊंच नहीं, हमारा कुल क्या हम ब्राह्मण वंशी हैं, सबका योग एक के साथ है, तुम्हारा आपस में कोई भी संबंध नहीं है, कोई संबंध बाबा की बच्चे और कोई संबंध नहीं है, लेकिन लौकिक रीति से भल कहेंगे लेकिन नष्ट मुआ बनना है, तुम्हारा आपस में कोई भी संबंध नहीं, भाई बहन का संबंध भी गिरा देता है, तो कौन सा संबंध रखना है, भाई भाई का संबंध एक से होना चाहिए। ये है नई बात, पवित्र होकर वापिस जाना है, ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करने से तुम क्या होगा बहुत रौनक में आएंगे। जो विचार सागर मंथन करते ना उनको अंदर बिल्कुल ऐसे सेटिस्फेक्शन होती है, भरपूर रहते हैं। अगर विचार सागर मंथन नहीं करते हैं सारा समय कहेंगे खाली है खाली है, आज योग नहीं लगा आज ये नहीं हुआ, तो बाबा कहते रौनक में आ जाएंगे भरपूर हो जाएंगे। ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करने से तुम बहुत रौनक में आएंगे। सतयुग की रौनक और कलयुग की रौनक में रात दिन का फर्क है। सतयुग के अंदर जो रॉयलिटी है, कलयुग में आप देखो क्या हाल हुए पड़े हैं। तो बाबा कहते रात दिन का फर्क है। भक्ति मार्ग के समय है ही रावण का, भक्ति मार्ग के समय है ही रावण का राज्य। और पिछाड़ी में साइंस का घमंड भी कितना होता है, जैसे कि सतयुग से भेंट करते हैं। एक बच्ची ने समाचार लिखा, क्योंकि जो भी सेवा करते थे ना बाबा के पास समाचार पत्र भेजते थे, उस समय तो पत्र ही लिखते थे, और वो पत्र भी कभी 8 दिन 10 दिन के बाद ही बाबा के पास पहुंचता था। तो बाबा को एक बच्ची ने समाचार दिया, एक बच्ची ने समाचार लिखा कि हमने प्रश्न पूछा स्वर्ग में हो या नरक में हो। ग्रुप के ग्रुप आते थे ना, तो एक तो शुरू में बाबा ने प्रश्नावली बना दी थी, पहले उनको प्रश्नावली दो फिर कभी पूछा। तो जैसे पूछा तो 4-5 ने कहा हम स्वर्ग में हैं, और बुद्धि में रात दिन का फर्क पड़ जाता है। कोई समझते हम तो नरक में है, अब कह दिया स्वर्ग लेकिन वास्तव में तो है नहीं ना, कोई कहते हम तो नरक में है। फिर उनको समझाना पड़ता है कि स्वर्गवासी बनना चाहते हो, स्वर्ग कौन स्थापन करते। अब जो कहता हूँ है ही स्वर्ग में तो क्या ज्ञान सुनेगा, जो कहता है कि नहीं हम नरक में हैं, तो उसको बता सकते हैं कि स्वर्ग कौन स्थापन करता है, स्वर्गवासी कैसे बन सकते हैं, स्वर्ग कौन स्थापन करते हैं। ये बहुत मीठी मीठी बातें हैं। तुम नोट करते हो परंतु वह कॉपी में ही नोट्स रह जाते, इतने नोट्स करते हैं। बाबा के टाइम पर बहुत नोट करते, बाबा कभी कभी कहते थे जो सुन रहे हो उसको नोट करो, कभी कभी नोट करके एक साइड में रख देते हैं और बातों में रख जाते। बाबा कहते उसको पढ़ो फिर उस पर मनन करो। हमने दादियों का देखा, बड़ी दादी चंद्रमणि दादी सब क्या करते थे, नोट्स लेते थे। खास करके मेरी रतनमणि दादी, वो तो नोट्स लेने में उनकी बात ही मत पूछो, इतना लिखती वो कॉपियां ही भरती थी और इतना नोट्स लेती थी दादियां। फिर नोट्स लेने के बाद फिर वो कॉपी लेकर बैठते थे, फिर उसको पढ़ते थे, फिर हम सब जो बैठते थे वो नोट्स लेकर के फिर पढ़ करके उसको रिपीट करते थे। ये दादियों की विशेषता रही। सब दादियां किसी को भी देखो, और सबसे नंबर वन दीदी मनमोहिनी। दीदी मनमोहिनी के आप सबको पता हो कि जैसे मुरली चलती थी, मुरली में प्रश्न जो निकालना, ये जो आजकल प्रश्न आते मुरली में, ये सिखाया दीदी मनमोहिनी ने। दीदी मनमोहिनी क्या करती, मुरली चलते चलते प्रश्न नोट कर लेते, पूरा मुरली पूरा होते ही वो प्रश्न पूछना शुरू कर देते। अब किसकी बुद्धि में याद रहता है किसकी बुद्धि में याद नहीं रहता। तब से ये सिस्टम बन गया कि हर मुरली के आगे प्रश्न हो, उसका उत्तर हो। प्रश्न पढ़ते सुनते और उत्तर सुनते ही कम से कम कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वो बुद्धि में याद रहती हैं। तो ऐसे ही बाबा कहते थे नोट्स लो, लेकिन उसको भूल जाते हैं ना। तो बाबा बता रहे हैं तुम नोट करते हो परंतु वो कॉपी में ही नोट्स रह जाते हैं, समय पर याद नहीं आते। कई बार कई भाषण करने वाले भी गए, मैंने बहुत सारे पॉइंट्स लिखे थे लेकिन भाषण करते करते भूल गए, देखो ना मैंने पॉइंट लिखी हुए, अरे पॉइंट तो वहां लिखी पड़ी, ये पढ़ा ही नहीं है। तो बाबा कहते समय पर भूल जाते हो। अब पति से पावन बनाने वाला परम पिता परमात्मा शिव हैं, वे कहते हैं माम एकम याद करो तो पाप कट जाएंगे। याद में तो कोई आमदनी होगी ना, याद में कितनी आमदनी होती है, याद की रस्म अब निकली है, याद से तुम कितना ऊंच स्वच्छ बनते हो, जितनी जो मेहनत करेगा उतना ऊंच पद पाएगा। बाबा से भी पूछ सकते हो, दुनिया में तो संबंध और जायदाद के पीछे झगड़े ही झगड़े, सबसे बड़े झगड़े हैं प्रॉपर्टी के पीछे, और ऐसे झगड़े हैं ऐसी हालत कर देते हैं जो कि अपने रिश्ते को भी भूल जाते हैं, जो ऐसा कर्म कर देते हैं बहुत खतरनाक होता है। तो बाबा कहते दुनिया में तो संबंध और जायदाद के पीछे झगड़े ही झगड़े हैं, यहाँ तो कोई भी संबंध नहीं, एक बाप दूसरा ना कोई बाप है बेहद का मालिक, बात तो बड़ी सहज है, उस तरफ है स्वर्ग और इस तरफ है नरक, नरकवासी अच्छे या स्वर्गवासी अच्छे। अब बाबा कहते ऐसे प्रश्न पूछो, कि बाबा हमेशा सिखाते थे ज्ञान कैसे सुनाना, उनको पूछो अच्छा बताओ नरकवासी अच्छे या स्वर्गवासी, वो आप ही बोलते थे स्वर्गवासी अच्छे हैं, जो सियाने होंगे वो कहेंगे। अब बाबा ने बता दिया जो सियाने होंगे वो कहेंगे स्वर्गवासी अच्छे, जो ऐसे होंगे ना डल इंटेलेक्ट या शरारती बुद्धि हो जान कहेंगे नरकवासी, लेकिन बाबा कहते जो सियाने होंगे वह कहेंगे स्वर्गवासी अच्छे। कोई तो कह देते नरकवासी और स्वर्गवासी, इन बातों से हमारे कोई मतलब नहीं, कोई कुछ भी हो हमें क्या करना है, क्योंकि बाप को नहीं जानते हैं। कोई फिर बाप की गोद से निकल माया की गोद में चले जाते हैं, वंडर है ना, आए बाबा की गोद में और चले कहाँ जाते हैं। बाप भी वंडरफुल, ज्ञान भी वंडरफुल, और कौन वंडरफुल है, बाप भी वंडरफुल, ज्ञान भी वंडरफुल, बोलो ना हम सब बच्चे भी वंडरफुल, और जो निकल गए वो महान, क्या कहेंगे वंडरफुल तो नहीं कहेंगे, वो महान, उसको बाबा कुछ और कह देते हैं ना। तो बाबा कहते हैं बाप भी वंडरफुल तो ज्ञान भी वंडरफुल, सब वंडरफुल है, इन वंडर्स को समझाने वाला भी ऐसा ही चाहिए, इन वंडर्स को समझाने वाला भी बाबा क्या है वंडरफुल है। जिसकी बुद्धि इस वंडर में लगी रहेगी, रावण तो वंडर है नहीं, ना उनको रचना वंडर है, ना रावण वंडर है ना उसकी रचना वंडर है, रात दिन का फर्क है। शास्त्रों में लिख दिया है काली देह में गया सर्प ने डसा तो काला हो गया, अब तुम अच्छी रीति सब समझा सकते हो। श्री कृष्ण के चित्र को कोई उठाकर पढ़े तो रिफ्रेश हो जाए। बाबा हमेशा कहते थे जब कभी थक जाते हो तो लक्ष्मी नारायण के चित्र के सामने बैठ जाओ, श्री कृष्ण के चित्र के सामने बैठ जाओ, जैसे देखोगे एकदम रिफ्रेश हो जाएंगे। बाबा खुद भी क्या करते थे, लक्ष्मी नारायण के चित्र के आगे, लक्ष्मी नारायण के चित्र के सामने बैठ जाते थे और बाबा इतना खुश होते, अच्छा मैं ये बनने वाला हूँ, पर खुश नहीं उसमें बाबा को होता था कि मुझे ये ऐसा पुरुषार्थ करना है ताकि मैं ऐसा बनूं। तो 84 जन्मों की कहानी है, जैसे श्री कृष्ण की वैसे तुम्हारी, स्वर्ग में तो तुम भी तो आते हो ना, फिर त्रेता में भी आते रहते हैं, वृद्धि होती रहती है, ऐसे नहीं त्रेता में जो राजा होते हैं वह त्रेता में आएंगे, राज जो त्रेता में राजा बनने वाले हैं वो सचिव अंत में आते हैं, दास दासी बनते हैं, फिर त्रेता में आकर के वो राजा बनते हैं, ऐसे नहीं कि जो त्रेता में आने वाले त्रेता में आएंगे, पढ़े हुए के आगे अनपढ़े को भरी ढोनी पड़ेगी। ये ड्रामा का राज बाबा ही समझा सकते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो हमारे मित्र संबंधी आदि सब कौन है, नरक में तो इसलिए कहना पड़ता है नरकवासी हैं, हम पुरुषोत्तम संगम योगी हैं, अब पुरुषोत्तम बन रहे हैं बाहर के रहने और यहाँ 7 रोज आकर रहने में बहुत फर्क पड़ जाता। हमेशा कहेंगे बाबा के घर जाना है 2 दिन रहना है 3 दिन रहना है, तो कितना अंतर हो जाता है, बाहर रहते और यहाँ आकर के रिफ्रेश होते ना। तो बाबा कहते बाहर के रहने और यहाँ 7 रोज आने में बहुत फर्क पड़ जाता। बाबा के टाइम फिक्स था 7 रोज का, और अभी क्या है बाबा के टाइम पर जो टर्न होते तब 7 रोज, और वैसे शिविर के लिए 1 दिन आना 3 दिन करना और 5वें दिन जाना, और जिसको रिफ्रेश होना होता है वो तो 2 दिन में भी हो जाता है। तो बाबा कहते हैं 7 रोज आकर रहने में बहुत फर्क पड़ जाता है। हंसों के संग से निकल फिर बगलों के संग में जाते हैं, बहुत बिगाड़ने वाले भी है यहाँ से, अभी तो नहीं है, शुरू में जब जाते थे तो बहुत तंग करते थे, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते थे, घर में रहते थे सारा टाइम टुक 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 करते रहेंगे। तो बाबा कहते बहुत बिगाड़ने वाले भी हैं, बहुत बच्चे मुरली की परवाह भी नहीं करते, अरे बाहर वाले तो बिगाड़ते हैं कोई बात नहीं, लेकिन बच्चे खुद ही मुरली की परवाह नहीं करते। बाप समझाते हैं बच्चे गफलत नहीं करो, तुमको तो खुशबूदार फूल बनना है, सिर्फ एक बात ही तुम्हारे लिए काफी है, कौन सी? याद की यात्रा। यहाँ तुमको ब्राह्मणों का संग मिलता है, कहाँ ऊंच से ऊंच और कहाँ नीच। बच्चे लिखते हैं, बाबा बगलों के झुंड में हम एक हंस क्या करेंगे, हम एक हैं, वो इतने सारे रिलेशन में हैं, उस झुंड में रहना पड़ता है, हम एक हंस क्या करेंगे। उस समय ऐसा था, लेकिन अब एक हंस से वो बहुत कुछ सीखते हैं। बच्चे लिखते हैं, बाबा बगलों के झुंड में हम एक हंस क्या करेंगे, बगले कांटे लगाते हैं, कितनी मेहनत करनी पड़ती है, बाप की श्रीमत पर चलने से पद भी ऊंच मिलेगा, सदैव हंस होकर रहो। समझा, जो परिवार में रहने वाले हैं, बाबा कहते सदैव हंस होकर रहो, बगले के संग में बगला न बन जाना। जैसे बाप बच्चों को शिक्षा देते ना, तो बाबा ने क्या कहा, सदैव हंस होकर रहो, बगलों के संग में बगला न बन जाओ। गायन भी है, आश्चर्यवत सुनंती, आश्चर्यवत कथंती, सुनावंती। फिर बाबा कहते ओहो माया भागंती, थोड़ा भी ज्ञान है स्वर्ग में तो आएंगे। फिर बाबा ने रिहायत दे दी, चलो कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत ज्ञान सुना सतयुग में तो आ जाएंगे, लेकिन पद तो कम होगा ना, परंतु फर्क रात दिन का पड़ जाता है, सजाएं बहुत कड़ी खाएंगे। बाप कहते हैं मेरी श्रीमत पर न चल, पतित बने तो 100 गुना दंड पड़ जाता है, फिर पद भी कम हो जाता है, ये राजाई स्थापन हो रही है, ये बातें भूल जाती हैं, ये भी याद रहे कि ऊंच पद पाना है तो पुरुषार्थ भी जरूर करें, नहीं करते हैं तो समझा जाता है एक कान से सुन दूसरे कान से निकाल देते हैं। बाप से योगी नहीं है, इतना सुन रहे हैं बुद्धि में नहीं बैठते हैं, तो अंडरस्टूड है कि बाबा से योग नहीं है, जो सुना निकाल देते हैं, बाप से योग नहीं है। यहाँ रहते भी बुद्धि योग बाल बच्चों की तरफ चलाया, आएंगे यहाँ बैठे हैं बाबा के पास, लेकिन बुद्धि में क्या है, बाल बच्चे पता नहीं क्या क्या याद रहते हैं। यहाँ रहते भी बुद्धि योग बाल बच्चों की तरफ चला जाता है। बाप कहते हैं सब कुछ भूल जाना है, इसको कहा जाता है वैराग्य। सब कुछ भूल जाना है, इसको बाबा कहते वैराग्य। कभी कभी बाबा कहते बेहद का वैराग्य, इसको कहा जाता है वैराग्य। फिर इसमें भी परसेंटेज है, वैरागी सभी है लेकिन उनकी परसेंटेज है। कहाँ न कहाँ ख्याल चले जाते हैं, एक दो से लव चला हो जाता है, एक दो के प्यार में फंस जाते हैं तो भी बुद्धि लटक जाती है, क्या हाल हो जाता है। बाबा रोज समझाते हैं, इन आंखों से जो कुछ देखते हो वह सब खत्म होने वाला है, तुम्हारा बुद्धि योग नई दुनिया में रहे और बेहद के संबंधियों से बुद्धि योग रखना है। बेहद के संबंधी कौन है? एक बाबा है, उसके साथ ही सर्व संबंध है, तो बेहद के संबंधों से बुद्धि योग रखना है। वह माशुक वंडरफुल है, भक्ति में भी गाते हैं कि जब आप आएंगे तो हम आपके बिगर किसी को भी याद नहीं करेंगे। अब मैं आया हूँ तो अब तुमको सब तरफ से बुद्धि योग हटाना पड़े, ये सब कुछ मिट्टी में मिल जाना है। तुम्हारा तो जैसे कि मिट्टी के साथ बुद्धि योग है। ये देह संबंधों को याद करते ना, तो ये सब क्या है, मिट्टी है। तो अगर वो ऐसे करेंगे तो बाबा को कहना पड़ता है, तुम्हारा तो जैसा देह मीन्स मिट्टी के साथ संबंध है। तो बाबा कहते हैं ये सब कुछ मिट्टी में मिल जाना है, तुम्हारा जैसा मिट्टी के साथ बुद्धि योग है, मेरे साथ बुद्धि योग होगा तो मालिक बन जाएंगे। बाप कितना समझदार बनाते हैं, मनुष्य नहीं जानते कि भक्ति क्या है और ज्ञान क्या है। अब तुमको ज्ञान मिलता है तब तुम भक्ति को भी समझते हो। अब तुमको फीलिंग आती है कि भक्ति में कितना दुख पाया। मनुष्य भक्ति करते हैं, अपने को बहुत सुखी समझते हैं, फिर भी कहते हैं भगवान आकर के ऐसे फल देंगे। किसको और कैसे फल देंगे? वो कहते हैं भक्ति करते रहो, भगवान कभी तो आ जाएंगे ना, कभी ना कभी तो आएंगे, लेकिन कब आएंगे, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, किसको और कैसे फल देंगे, वह कुछ भी नहीं समझते। अब तुम जानते हो बाप आकर भक्ति का फल देने आए हैं। विश्व की राजधानी का फल जिस बाप से मिलता है, उस बाप, वह बाप जो डायरेक्शन देते हैं, उस पर चलना पड़े। विश्व की बादशाही का फल जो बाप से मिलता है, वह बाप जो डायरेक्शन देते हैं, उस पर चलना पड़े। उसको कहा जाता है ऊंच से ऊंच श्रीमत। मत मिलती है सबको, फिर कोई चल सकते हैं, कोई चल ना सके। बेहद की बादशाही स्थापन होनी है। अभी तुम समझते हो हम क्या थे, अब हमारी क्या हालत है। कंपेयर करो, पहले हम क्या थे और अभी हम क्या बन रहे हैं। बाबा का बनने से हमारे जीवन में कितना परिवर्तन है, अब हमारी क्या हालत है। माया एकदम खत्म कर देती है। ये तो जैसे मुर्दों की दुनिया, दुनिया में भी जाओ इतना धन संपत्ति, इतना धन संपत्ति, लेकिन लाइफ के अंदर इतना टेंशन है, जैसे कि चलते फिरते खाते पीते डेड बॉडी की तरह है, लेकिन ऐसी हालत हो चुकी है। तो बाबा को कहना पड़ता है ये तो जैसे कि मुर्दों की दुनिया है। भक्ति मार्ग में तुम जो सुनते थे वह सब सच सच करते थे, लेकिन तुम जानते हो सत तो एक बाप ही सुनाते हैं। तो ऐसे बाप को याद करना चाहिए। यहाँ कोई बाहर वाला बैठा हो तो बाबा हमेशा कहते थे, साकार बाबा के टाइम पर नया व्यक्ति बाहर वाला जिसने ज्ञान को नहीं समझा है तो उनको नहीं बिठाते थे। वो समझते ही नहीं थे क्या है, वो तो बाबा को देखेंगे कहेंगे इनके गुरुजी समझा रहे, कोई साधारण व्यक्ति है। तो बाबा कहते हैं यहाँ कोई बाहर वाला बैठा हो तो उनको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। दो दिन का कोर्स भी किया होगा तो ज्ञान की जो बातें ऐसे कुछ कुछ ऐसी टिपिकल वर्ड्स हैं उनको वो समझ ही नहीं सकेंगे। बाबा जो रहस्य बताते वो भी नहीं समझ सकेंगे। यहाँ कोई बाहर वाला बैठा हो तो उनको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। कहेंगे पता नहीं ये क्या सुनाते, कई कई अपना अनुभव सुनाते। शुरू में हम आए जब सुना पहली बार मुरली तो फिर क्या होता समझ ही नहीं आता था क्या बोलते। इसलिए बाबा ने हमेशा पक्का किया था जब मुरली शुरू करते हो पहले उनको आधा पेज सुनाओ, आधा पेज की एक एक लाइन उसको एक्सप्लेन करो, तब उसकी बुद्धि में बैठेगा। अब तो खैर धीरे धीरे सा बैठता ही जाता है। कहेंगे पता नहीं ये क्या सुनाते हैं, सारी दुनिया कहती है परमात्मा सर्वव्यापी है और ये कहते परमात्मा हमारा बाप है। जो नया व्यक्ति क्या कहेगा, दुनिया कहती परमात्मा सर्वव्यापी और ये कहते हमारा बाप है। अब देखो कितना कंफ्यूजन हो जाता है। सारी दुनिया कहती है परमात्मा सर्वव्यापी है और ये कहते वह हमारा बाप है, कान से ना ना करते रहेंगे। अब वो बैठेंगे ना, जो भी सुनेंगे ना 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 करते रहेंगे ऐसे ऐसे, और जो सुनने वाला जिसको अच्छा लगता है वो हाँ हाँ करेगा और कान से ना ना कर ना सुने समझेंगे, कान से ना ना करते रहेंगे। तुम्हारे अंदर से हाँ हाँ निकलती रहे, खुशी होगी हाँ हाँ। बाबा जब ज्ञान सुनाते थे बाबा हर एक बच्चे के चेहरे से जान जाते किसको समझ आ रहा है या नहीं जा रहा है। तो बाबा कहती हैं तुम्हारे अंदर से हाँ हाँ निकलती रहेगी, इसलिए नए कोई को भी अलाउ नहीं किया जाता। शुरू में नए किसी को अलाउ नहीं करते। अभी तो ठीक है, अभी ज्ञान की इतनी बातें समझ आ जाती है, उस समय तो बिल्कुल नहीं समझते। नया कोई भी आता था तो उसको ना तो बाबा के सामने लाते थे और सेंटर पर भी क्लास में पहले दिन नए को नहीं बिठाते थे। कोर्स कराया, मुरली की 4 पॉइंट पक्की कराई, उसके बाद धीरे धीरे उनको मुरली क्लास में लाते थे। इसलिए नए कोई को अलाउ नहीं किया जाता। बाबा ने ये सिस्टम इतना अच्छा बनाया था, इसी कारण से ही आज ज्ञान की गहराई और ज्ञान की बातें उनकी बुद्धि में बैठी। अच्छा, आ रहे एक है, स्नेह होता है ना दो का आपस में, कहेंगे भले ये दो हैं तो वो कहेंगे नहीं दोनों एक है। हम आपको बताएं दादी और दीदी के लिए क्या कहते थे, चाहे दो शरीर हैं चाहे दो आत्माएं हैं लेकिन दोनों होते हुए भी एक है। तो इतना उनका एक दूसरे के प्रति अंडरस्टैंडिंग, रिस्पेक्ट था, प्यार था कि जो भी काम करते थे एक दूसरे से मिलकर करते थे। तो बाबा कहते स्नेह की निशानी गाई जाती है कि दो होते हुए भी दो ना रहें लेकिन मिलकर एक हो जाएं, इसको ही समा जाना कहते हैं। भक्तों ने इसी स्नेह की स्थिति को समा जाना व लीन होना कह दिया है। लव में लीन होना ये स्थिति है, लेकिन स्थिति के बदले उन्होंने आत्मा के अस्तित्व को, लव में लीन होना ये स्थिति है लेकिन स्थिति के बदले उन्होंने आत्मा के अस्तित्व को सदा काल के लिए समाप्त होना समझ लिया। वो कहते हैं ना आत्मा ब्रह्म में लीन हो गई। आप बच्चे जब जो व्यर्थ संकल्पों से मन का मौन रखता है, अंतर्मुखी वह है जो व्यर्थ संकल्पों से मन का मौन रखता है। अभी आप सुनेंगे आज का अव्यक्त इशारा। आज 24 तारीख है। सदा याद रखो मुझे अपने को बदलना है। कौन सी बात? सदा याद रखो मुझे अपने को बदलना है, स्थान व दूसरों को नहीं, स्थान को या दूसरों को नहीं। इसके लिए सहनशीलता का अवतार बन जाओ, अपने को एडजस्ट करो, किनारा नहीं करो। कई बार क्या होता है ना किनारा कर लेते। बाबा हमेशा कहते थे अपने को एडजस्ट करो, किनारा नहीं करो। कोई बिल्कुल एंटी है उस पर भी अपनी शुभ भावना का फुल फोर्स से ट्रायल करो। समय भर लगे सफलता अवश्य मिलेगी और आपको विजयी माला का दाना बना देगी। बाबा ने क्या कहा? समय भर लगे सफलता अवश्य मिलेगी और आपको विजयी माला का दाना बना देगी। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। अभी हम सभी प्यारे बाबा की याद में बैठेंगे। ओम शांति।